आगे सबक देखिए भाई, किताबु तलाक, बाबु तलाक सुन्ना। قال الطلاق على ثلاثة أوجه حسن وأحسن وبدعي فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے ایک صغیرہ اور کبیرہ سے نکاح کر لیا اور پھر کبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پلایا تو یہ دونوں عورتیں خاوند پر حرام ہو جائیں گی، بھئی دونوں کے نکاح فاسد ہو گئے، اس لیے کیونکہ وہ شخص جو ہے رضاعی ماں بیٹی کو جمع کرنے والا بن گیا، اور جس طرح نسبی ماں بیٹی کو اپنے نکاح میں جمع کرنا منع ہے اسی طرح رضاعی ماں اور بیٹی کو بھی نکاح میں جمع کرنا منع ہے بھئی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب کبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پلایا تو کبیرہ جو ہے وہ ساس بن گئی اس خاوند کی، کیونکہ اس کی بیوی کی ماں ہے وہ، تو وہ ساس بن گئی، اور ساس جو ہے وہ تو انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، اور جبکہ صغیرہ جو ہے وہ خاوند کی ربیبہ بن گئی یعنی اس کی بیوی کی بیٹی، اور جب ربیبہ بن گئی تو ربیبہ بھی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے جب خاوند اس کی ماں کے ساتھ صحبت کر لے، تو لہذا یہ دونوں نکاح فاسد ہو گئے، لیکن کبیرہ تو ساس بن چکی ہے لہذا اب اس سے دوبارہ زندگی بھر نکاح کی کوئی صورت نہیں، البتہ صغیرہ جو ہے وہ ربیبہ بنی ہے، اور اگر خاوند نے کبیرہ سے صحبت کر لی تھی تو پھر تو یہ ربیبہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر خاوند نے کبیرہ کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی تھی تو پھر یہ صغیرہ حلال ہے اور یہ نکاح تو فسخ ہو گیا لیکن خاوند دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. اور پھر صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر کبیرہ کے ساتھ خاوند صحبت کر چکا ہے پھر تو مہر پکا ہو چکا ہے، پھر تو پورا مہر دینا پڑے گا، اگرچہ جدائی کبیرہ کی طرف سے آئی ہے لیکن مہر تو پہلے ہی سے پکا ہو چکا تھا صحبت کی وجہ سے، تو پورا مہر دینا پڑے گا. لیکن اگر صحبت سے پہلے یہ کبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پلایا ہے تو پھر اس صورت میں جدائی جو ہے یہ عورت کی طرف سے آئی ہے، لہذا وہ نصف مہر جو صحبت سے پہلے بیوی کا حق بنتا ہے وہ بھی اب اس کبیرہ کو نہیں ملے گا بھائی، جبکہ صغیرہ جو ہے اس کا تو اس جدائی میں کوئی دخل نہیں کیونکہ اس کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کو نصف مہر دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد خاوند کو یہ جو صغیرہ کو نصف مہر دینا پڑا یہ اس کبیرہ کی وجہ سے دینا پڑا، تو کیا خاوند کبیرہ پر رجوع کرے گا یا نہیں؟ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہوتا ہے مباشر اور ایک ہوتا ہے مسبب. مباشر مثلا کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے براہ راست اپنے فعل کے ذریعے، کہ کوئی کسی کی گاڑی تباہ کر دیتا ہے یا موٹر سائیکل تباہ کر دیتا ہے، تو یہ جو مباشر ہے جس نے اس چیز کو تباہ کیا ہے اس کے اوپر زمان آئے گا، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، نقصان دینا چاہتا تھا یا نقصان نہیں دینا چاہتا تھا. بھئی جب اس نے نقصان پہنچایا ہے براہ راست اپنے فعل کے ذریعے تو پھر وہاں ہر حال میں اس پر زمان آئے گا، لیکن اگر کوئی کسی شخص کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والے نے براہ راست اپنے عمل کے ذریعے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ صرف سبب بنا ہے تو وہ مسبب ہوا، اور مسبب کے اندر پھر تعدی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے کہ زیادتی نہیں کی، اگر اس نے تعدی کی ہو تو پھر اس پر زمان آتا ہے، اگر اس نے تعدی نہیں کی تو پھر اس پر زمان بھی نہیں آتا. تو یہاں آپ نے متن کے اندر پڑھا کہ یہ جو کبیرہ ہے یہ مسببہ ہے، लिहाजा इस पर जमान आएगा या नहीं आएगा इसमें तादी को देखा जाएगा। अगर इसने फसाद का इरादा किया था फिर तो इस पर जमान आएगा, और अगर इसने फसाद का इरादा नहीं किया तो इस पर जमान भी नहीं आएगा। और फसाद का इरादा तभी हो सकता है जब इसको निकाह का भी पता हो और इसको इस मसले का भी पता हो कि मेरे दूध पिलाने से ये दोनों निकाह फासिद हो जाएंगे। और अगर उसको निकाह का इलम नहीं है या उसको इस मसले का पता नहीं है तो फिर इस सूरत के अंदर यह मुतअद्दिया नहीं है भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने यह भी बयान फरमाया कि यह औरत मुबाशिरा नहीं है बल्कि मुसब्बिबा है। इसको मुबाशिरा हम करार नहीं दे सकते इसलिए क्योंकि इसने दूध पिलाया है, और दूध पिलाना यह तो कोई निकाह को फसख करने के लिए, निकाह को फासिद करने के लिए वजह नहीं, बल्कि दूध तो बच्चों की परवरिश के लिए उनको पिलाया जाता है। लिहाजा इस दूध पिलाने की वजह से इसको मुबाशिरा करार नहीं दिया जा सकता कि इसकी वजह से इस पर जमान वाजिब किया जाए कि जो खामंद ने निस्व महर सगीरा को दिया है वह अब तुम्हें अदा करना पड़ेगा। तो दूध पिलाना यह फसाद के लिए वजा नहीं। यह तो इत्तेफाकन यहां ऐसी सूरत पेश आ गई कि यह सगीरा इस खावन की बीवी थी, अगर सगीरा खावन की बीवी ना होती तो यहां किसी किस्म की कोई खराबी भी ना आती। तो मालूम हुआ दूध पिलाने की वजह से यह औरत कोई मुबाशिरा नहीं हुई, इस पर जमान वाजिब नहीं किया जा सकता, और नीज दूध पिलाने से निकाह फासिद हुआ है, इस फसादे निकाह की वजह से भी इस पर जमान को वाजिब नहीं किया जा सकता, क्योंकि निकाह वो तो कोई कीमत वाली चीज नहीं है, वो तो एक आकद का नाम है। मियां बीबी के दरमियान जो आकद मौजूद है उसका क्या नाम है? निकाह है। तो निकाह कोई कीमत वाली चीज नहीं है और इसके फासिद करने से किसी पर जमान नहीं आ सकता भाई, इसलिए क्योंकि फसाद निकाह ये महर को लाजिम नहीं करता बल्कि ये तो महर के सुकूत का सबब बनता है भाई। इसकी वजह से तो महर साकित होना चाहिए। कियास ये तकाजा करता है कि जब खावन ने सोहबत से पहले बीवी को तलाक दे दी है तो देखो इस सूरत के अंदर खावन पर तो कोई महर नहीं आना चाहिए क्योंकि खावन ने मुबदल वसूल नहीं किया, खावन ने सोहबत नहीं की, तो बदल भी खावन पर नहीं आना चाहिए। और ये जो खावन पर निस्व महर वाजिब होता है ये भी मुता के तरीके पर है, यानी बतौर तोहफे के शरीयत ने खावन पर वाजिब किया है कि इस औरत को तोहफा दे दो, इस औरत को तोहफे के तौर पर निस्व महर दे दो। मालूम हुआ कियास तो यह तकाजा करता है कि फसाद निकाह की वजह से भी इस औरत पर जमान वाजिब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फसाद निकाह वो इल्जाम महर का सबब नहीं बल्कि वो तो सुकूत महर का सबब है भाई। तो मालूम हुआ न दूध पिलाने की वजह से औरत पर जमान वाजिब किया जा सकता है और न फसाद निकाह की वजह से। हां, इस औरत के अमल की वजह से इस खावन का निकाह बातिल हुआ है और इब्ताले निकाह इस वजूब का सबब है भाई। खावन पर निस्व महर तब ही वाजिब होगा जब उसका निकाह बातिल हो जाए। तो ये जो कबीरा है इसने सिर्फ शर्त पूरी की है, इसने दूध पिलाकर निकाह को क्या कर दिया? बातिल कर दिया, यानी सिर्फ शर्त पूरी की है। और जो शख्स शर्त पूरी करे उसको मुसब्बिब कहते हैं, मुबाशिर नहीं कहते भाई। तो इसके अंदर लिहाजा तअद्दी देखी जाएगी, अगर इसने तअद्दी की है फिर तो इस पर जमान वाजिब करेंगे और अगर इसने तअद्दी नहीं की तो इस पर जमान वाजिब नहीं। लिहाजा अगर इसको मसले का ही पता नहीं था तो इस सूरत में भी इस पर जमान वाजिब नहीं होगा भाई। तो यहां एतराज होता है, एतराज ये कि ए साहिब हिदाया यहां आपने इस कबीरा की जहालत को उजर करार दे दिया कि अगर कबीरा को इस मसले का पता नहीं था कि मेरे दूध पिलाने से निकाह फासिद हो जाएगा तो फिर इस सूरत में इसके ऊपर जमान वाजिब नहीं होगा। ये जो निस्व महर खावन ने सगीरा को दिया है अब इसमें वो कबीरा पर रुजू नहीं कर सकता क्योंकि उसको मसले का पता नहीं था। तो आपने तो जहालत को उजर करार दे दिया, हालांकि आपने पीछे एक मसले में हमें बतलाया था कि दारुल इस्लाम के अंदर मसले से जहालत कोई उजर नहीं है। किसी को मसले का पता हो या ना हो हुक्म साबित हो जाएगा। तो वहां खियारे बुलूग का मसला पीछे गुजरा था, खियारे बुलूग आपने पढ़ा था कि अगर सगीर या सगीरा का निकाह जो है अगर बाप या दादा करवा दें तो फिर इस सूरत में वो निकाह इन पर लाजिम है, वो बालिग होने के बाद भी इसको फसख नहीं कर सकते। लेकिन बाप दादा के अलावा अगर कोई और वली जो है सगीर या सगीरा का निकाह कर दे तो फिर बालिग होने पर इनको खियारे बुलूग मिलता है, ये उस निकाह को फसख कर सकते हैं। और वहां आपने पढ़ा था कि ये जो बालिग होने वाला है या ये बाकेरा होगी या सैयबा होगी या सगीर होगा। भाई अगर सैयबा और सगीर जो है वो बालिग हुए हैं और उनका निकाह बाप दादा के अलावा किसी और वली ने करवाया था तो फिर इस सूरत में ये सैयबा बालिगा और ये जो सगीर जो बालिग हो गया इनकी जुबान से रजामंदी जरूरी है, ये जुबान से इजाजत देंगे तो फिर ही उनका खियार बुलूग साकित होगा, वरना जब तक उनके पास इख्तियार है वो निकाह को फसख कर सकते हैं। जबकि अगर वो सगीरा बाकेरा थी और वो बालिग हुई है तो बाकेरा की तो खामोशी भी रजामंदी की अलामत होती है। आपने पढ़ा था कि बाकेरा बालिगा से वली निकाह की इजाजत लेगा और बाकेरा बालिगा अगर खामोश रही इजाजत के मौके पर तो उसकी खामोशी भी रजामंदी की अलामत है। तो यहां पर भी अगर ये सगीरा बाकेरा थी और ये बालिग हुई तो उलमा और फुकाहा फरमाते हैं कि इसको खियारे बुलूग मिला है, लेकिन अगर ये बालिग होने के बाद कुछ देर भी खामोश रही तो इसकी खामोशी वो तो रजामंदी की अलामत है, तो इसका खियारे बुलूग साकित हो जाएगा, इसका खियारे बुलूग साकित हो जाएगा। मालूम हुआ सगीरा बाकेरा जिस मजलिस में बालिग हो, जिस मजलिस में उसको हैज का खून शुरू हो, फौरन उसका यह कहना कि मैं निकाह को फसख करती हूं या मैं निकाह को रद्द करती हूं यह कहना जरूरी है। अगर उसने थोड़ी सी भी देर कर दी तो उसका खियार बुलूग साकित हो जाएगा और यह निकाह उस पर लाजिम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर खामोश रही तो खामोशी आ गई और बाकिरा की खामोशी तो रजामंदी की अलामत है, तो ये इसकी रजामंदी आ गई, लिहाजा अब निकाह लाजिम हो गया। और वहां पर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर ये जो बाकिरा जो बालिग हुई है अगर इसको मसले का पता ना हो फिर भी खियारे बुलूग साकित हो जाएगा, फिर भी, क्योंकि दारुल इस्लाम के अंदर मसले से जाहिल होना यह कोई उजर नहीं है। दारुल इस्लाम के अंदर तालीम के मौके मौजूद हैं, तालीम के इदारे मौजूद हैं और हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी दीनी मसाइल का जानना जरूरी है, तो लिहाजा इनकी जहालत कोई उजर नहीं होगी। तो यहां एतराज हुआ कि ऐ साहिब हिदाया, आपने हमें उस पिछले मसले में बताया था कि दारुल इस्लाम के अंदर मसले से जहालत कोई उजर नहीं है, लेकिन यहां पर आप कह रहे हैं कि अगर इस कबीरा को मसले का पता नहीं था तो इस पर जमान नहीं आएगा। मालूम हुआ यहां आप जहालत को उजर करार दे रहे हैं, अगर उसको मसले का पता नहीं तो उस पर जमान नहीं आएगा। तो साहिब हिदाया ने जवाब दिया कि भाई देखिए, एक है इल्लत और एक है हुक्म। इल्लत जब भी पाई जाए हुक्म जरूर पाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता इल्लत पाई जाए और हुक्म न पाया जाए। तो अगर इल्लत पाई जाती और हम कहते कि चूंकि इसको मसले का पता नहीं था इसलिए हुक्म नहीं आएगा, तवज्जो है, इल्लत जब भी पाई जाए हुक्म का पाया जाना जरूरी। अब अगर एक इल्लत पाई जाती लेकिन हम कहते नहीं चूंकि इसको मसले का पता नहीं था, बेशक इल्लत पाई जा रही है लेकिन हुक्म नहीं आएगा, फिर आप हम पर एतराज कर सकते थे कि इल्लत पाई जा रही है लेकिन आप जहालत को उजर करार दे रहे हैं दफ़ए हुक्म के लिए। किसके लिए? दफ़ए हुक्म के लिए आप जहालत को इल्लत करार दे रहे हैं, दफ़ए हुक्म के लिए आप जहालत का एतबार कर रहे हैं। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि यहां ऐसा नहीं है, बल्कि यहां पर औरत पर जमान तब आएगा जब उसने फसाद की नीयत की हो, और फसाद की नीयत तभी हो सकती है जब उसको मसले का पता हो कि मेरे दूध पिलाने से ये निकाह फासिद हो जाएंगे। जब उसको ये इलम होगा फिर ही हम कह सकते हैं कि इसने मसला जानने के बावजूद दूध पिलाया है, इसका इरादा ही किस चीज का था? फसाद का था। तो यहां हमने जो जहालत का एतबार किया है वो इल्लत को दूर करने के लिए किया है कि वजूबे जमान की इल्लत क्या थी? कस्दे फसाद। क्या इल्लत थी? फसाद का इरादा, फसाद का इरादा तभी हो सकता है जब इसको मसले का पता हो। तो यहां हमने जो जहालत का एतबार किया है वो कसद फसाद को दफा करने के लिए किया है, यानी जो उस मसले की इल्लत है, तवज्जो है, जो जो मसले की इल्लत है उस इल्लत को दफा करने के लिए, कि कसद फसाद तभी हो सकता है, फसाद का इरादा तभी हो सकता है जब इस औरत को मसले का पता हो, फिर हम कहेंगे इसने फसाद का इरादा किया है। अगर इसको मसले का पता नहीं तो मालूम हुआ फिर कसद फसाद भी नहीं, और कसद फसाद तो इल्लत थी वजूब जमान की। तो जब इसको मसले का इलम नहीं तो कसद फसाद नहीं, जब कसद फसाद नहीं तो हुक्म भी नहीं, यानी जमान भी वाजिब नहीं होगा। तो हमने ये जो जहालत का एतबार किया है वो हुक्म को दूर करने के लिए नहीं किया कि इल्लत तो पाई जा रही हो और हम कहें फिर भी हुक्म नहीं आएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हमने जहालत का एतबार किया है इल्लत को दफा करने के लिए, कि जब इसको मसले का पता नहीं तो कसद फसाद नहीं पाया गया, और जब इल्लत नहीं पाई गई तो फिर वजूब समान यानी हुक्म भी नहीं आएगा। भाई बात समझ में आ गई? तो आप हमारे ऊपर एतराज तब कर सकते थे अगर इल्लत तो पाई जाती, लेकिन हम कहते कि चूंकि इसको मसले का पता नहीं था इसलिए हुक्म नहीं आएगा, इल्लत पाई जा रही है लेकिन हुक्म नहीं आएगा, फिर आप हम पर एतराज कर सकते थे कि आपने जहालत को उजर माना है। बल्कि यहां तो हमने जहालत का एतबार किस लिए किया है? इल्लत को दूर करने के लिए, कि जब जहालत है तो इल्लत ही नहीं पाई गई, और जब इल्लत ना हो फिर तो हुक्म नहीं आता भाई जी। तो यहां पर वजूब जमान की जो इल्लत है यानी कसद फसाद, फसाद का इरादा, वो जहालत की वजह से कसद फसाद ही नहीं पाया गया, क्योंकि कसद फसाद कब होगा? जब मसले का पता हो। तो जब जहालत की वजह से कसद फसाद नहीं पाया गया तो इल्लत नहीं पाई गई, इल्लत नहीं, जब इल्लत नहीं तो उसका हुक्म वजूब जमान भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई जी? तो साहिब हिदाया फरमाते हैं वहादा मिन नातिबारुल जहली लिदफ़ कसदिल फसादी लाली दफ़िल हुक्म वहादा, और ये जो है मिन्ना हमारी तरफ से एतबारुल जहली जहालत का एतबार, कि ये जो यहां पर हमने जहालत का एतबार किया है लिदफ़ कसदिल फसादी, ये कसद फसाद यानी इल्लत को दूर करने के लिए है, कि इल्लत ही यहां मौजूद नहीं, इल्लत ही यहां मौजूद नहीं, लाली दफ़िल हुक्मी, ये दफ़े हुक्म के लिए नहीं है। अगर हमने जहालत का एतबार किया होता दफ़े हुक्म के लिए कि इल्लत तो पाई जा रही है लेकिन हुक्म नहीं आएगा, फिर आप हम पर एतराज कर सकते थे, लेकिन यहां तो हमने जहालत का एतबार किया किस लिए? इल्लत को दूर करने के लिए, कि जब जहालत है तो कसद फसाद नहीं पाया गया, इल्लत नहीं पाई गई, और जब इल्लत नहीं पाई गई तो हुक्म यानी वजूब जमान भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो साहिब हिदाया फरमाते हैं वहादा मिन्ना अतिबारुल जहली, और ये जो हमारी तरफ से जहालत का एतबार किया गया है लिदफ़ कसदिल फसादी, ये कसद फसाद को दूर करने के लिए है यानी इल्लत को दूर करने के लिए है, ला लिदफ़िल हुक्मी, ना के हुक्म को दफा करने के लिए। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया था कि रजात के मसले के अंदर अकेली औरतों की गवाही काबिले कबूल नहीं, बल्कि दो मर्दों की गवाही होनी चाहिए या एक मर्द और दो औरतों की गवाही होनी चाहिए। जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रजात के मसले के अंदर अगर एक औरत भी गवाही दे दे और वह औरत काबिले एतमाद है, आदिला है, तो इस सूरत में हुर्मत साबित हो जाएगी। वजह यह कि किसी चीज का हराम या हलाल होना यह एक शरई अमर है, ये क्या है? एक शरई अमर है, तो हुर्मत जो है यह हकुल्ला है, यह हक शरा है, इसमें बंदे का दखल नहीं कि एक चीज उसके लिए हराम है भाई, तो यह हराम होना यह हक शरा है भाई, यानी ये एक अमरे दीनी है, खालिस दीनी चीज है, इसके अंदर एक आदमी की गवाही भी काफी है, एक आदमी की खबर भी काफी है। चुनांचे अगर एक मुसलमान गोश्त खरीदता है और बाद में आकर कोई काबिल एतमाद आदमी उसे बताता है कि ये तो मजूसी का जबीहा है, तो उस मुसलमान पर भी ये गोश्त हराम हो गया। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां ए अहनाफ, आपके नजदीक भी एक आदमी के खबर देने से यह गोश्त की हुरमत साबित हो गई, तो लिहाजा ये जो रजात है इस रजात की वजह से भी हुरमत आएगी, तो उसके अंदर भी एक काबिल एतमाद आदमी की गवाही काफी होनी चाहिए। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम मालिक रहमतुल्लाह। हम जवाब देते हैं कि अगर सिर्फ हुरमत आए तो वो तो हक़े शरा है, हुरमत आए तो वो तो हक़े शरा है, लेकिन अगर हुरमत के साथ साथ हक़ुल अब्द का भी दखल आ जाए, मसलन एक शख्स की मिल्कियत खत्म हो रही है, हुरमत की वजह से मिल्कियत खत्म हो रही है, तो फिर इस सूरत में खालिस हक़े शरा नहीं रहेगा बल्कि यह हक़ुल अब्द भी बन गया। और किसी भी चीज से मिल्कियत खत्म करने के लिए कम से कम दो मर्दों की गवाही जरूरी है, या एक मर्द और दो औरतों की गवाही जरूरी है। तो लिहाजा यहां पर भी ये जो निकाह का मसला है, इसके अंदर जब भी रजायत की वजह से हुरमत आएगी तो साथ ही जवाले निकाह भी आ जाएगा, अगर वो दोनों मियां बीवी हैं जिनकी रजायत की खबर दी जा रही है। अगर वो दोनों मियां बीवी हैं तो फिर वहां पर रजायत की वजह से अगर हुरमत साबित होगी तो साथ ही जवाले मिल्क भी आएगा, खावन की जो मिल्के निकाह है वो इस औरत पर से खत्म हो जाएगी। और किसी चीज से जवाले मिल्क जो है उसके लिए तो कम से कम दो गवाह, दो मर्द गवाह चाहिए, या एक मर्द और दो औरतें। इसलिए यहां पर हमने ये शर्त करार दिया भाई रजायत के मसले में कि एक के दो मर्द गवाही दें या एक मर्द और दो औरतें। जबकि खाने पीने और इस्तेमाल की जो चीजें हैं वहां पर तो हुरमत मिल्कियत के साथ जमा हो सकती है कि हुरमत आए और सवाले मिल्क ना हो, वहां तो ऐसा हो सकता है, लिहाजा वहां जो हुरमत है वो एक खालिस दीनी मामला होगा, इसलिए वहां पर एक आदमी की खबर का एतबार किया जाएगा। लेकिन निकाह के मसले में तो हुरमत के साथ साथ जवाले मिल्क भी आएगा भाई, तो फिर वो खालिस दीनी मामला न रहा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। किताबु तलाक, बाबु तलाक सुन्ना। قال الطلاق على ثلاثه اوجه حسن واحسن وبدعي। भाई यहां किताबु तलाक के आगाज में चंद जरूरी बातें हैं वो लिख लीजिए भाई, लिखिए भाई, ऊपर उनवान दे दीजिए किताबु तलाक, किताबु तलाक लिखिए भाई। तलाक का माना है, तलाक का माना है हल्लुल कैदी, हल्लुल कैद यानी बंद चीज को खोलना, यानी बंद चीज को खोलना, चाहे ये हिस्सी हो, चाहे ये हिस्सी हो। कहल्लिल उक्दती, कहल्लिल उक्दती यानी गिरह का खोलना, यानी गिरह का खोलना, रस्सी का खोलना। और चाहे वो मानवी हो, और चाहे वो मानवी हो। कहल कैद निकाही, कहल कैद निकाही। बात समझ में आ रही है भाई, तलाक का क्या माना है? हल्लुल कैद बंद चीज का खोलना, और ये खोलना जो है ये हिस्सन भी हो सकता है और मानन भी हो सकता है। हिस्सन खोलना जैसे कोई रस्सी वगैरह खोलना, गिरा वगैरह खोलना, और ये खोलना मानवी भी हो सकता है जैसे जैसे कैद निकाह का खोलना। भाई आगे लिखिए भाई, इस्तिलाह शरीयत में तलाक की तारीफ ये है, तलाक की तारीफ ये है, अत्तलाक इजालतुन निकाही, अत्तलाक इजालतुन निकाही, इजाला जा के साथ है। अत्तलाक इजालतुन निकाही औ नुकसान हिल्लिही, औ नुकसान हिल्लिही बिलफ्ज़िन मखसूसिन, بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ یعنی طلاق جو ہے وہ نام ہے، وہ نام ہے نکاح کو ختم کرنے، نکاح کو ختم کرنے اور نکاح کی حلت کو، اور نکاح کی حلت کو کم کرنے کا، کم کرنے کا مخصوص لفظ کے ساتھ، مخصوص لفظ کے ساتھ، یعنی طلاق کے لفظ کے ساتھ، یعنی طلاق کے لفظ کے ساتھ۔ بھئی دیکھیے یہ تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی، الطلاق ازالت النکاح، طلاق جو ہے وہ نکاح کا ازالہ کرنا یعنی نکاح کو ختم کرنا، اس کو زائل کرنا، او نقصان حلہ یا اس نکاح کی حلت کو کم کرنا۔ بھئی دیکھو کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ تین طلاقوں کا مالک ہے، تو اس طلاق کے ذریعے وہ نکاح کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور اگر طلاق دے کر وہ رجوع کر لیتا ہے، طلاق دے کر رجوع کر لیتا ہے تو دیکھو اب اس طلاق کی وجہ سے نکاح تو نہیں ختم ہوا کیونکہ اس نے رجوع کر لیا ہے، لیکن البتہ نکاح کی حلت کم ہو گئی۔ پہلے یہ عورت اس آدمی کے لیے حلال تھی تین طلاقوں کے ساتھ، اب یہ عورت اس آدمی کے لیے حلال ہے دو طلاقوں کے ساتھ، اب تمام زندگی اس شخص کو صرف دو طلاقوں کا حق ہے۔ پھر ایک اور طلاق بھی اگر اس نے دے دی اور پھر رجوع کر لیا تو اب اور بھی حلت کم ہو گئی، لہذا اب یہ عورت اس آدمی کے لیے صرف ایک طلاق کے ساتھ حلال ہے جی۔ اب تمام زندگی اس کو صرف ایک طلاق کا حق ہے، اگر وہ طلاق بھی اس نے دے دی تو پھر یہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ بھائی آگے لکھیے، بھائی طلاق دینے والے کے لیے، طلاق دینے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ، شرط یہ ہے کہ وہ شخص عاقل اور بالغ ہو، کہ وہ شخص عاقل اور بالغ ہو، لہذا مجنون اور بچے کی طلاق درست نہیں، لہذا مجنون اور بچے کی طلاق درست نہیں اور نہ ہی واقع ہوتی ہے، اور نہ ہی واقع ہوتی ہے۔ دیگر علماء و فقہا، دیگر علماء و فقہا اور ائمہ، اور ائمہ ایک تیسری شرط بھی ذکر فرماتے ہیں، ایک تیسری شرط بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ شخص مختار ہو، کہ وہ شخص مختار ہو یعنی صاحب اختیار ہو، یعنی صاحب اختیار ہو، لہذا مکرہ، لہذا مکرہ یعنی مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مگر عند الاحناف مکرہ کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، مگر عند الاحناف مکرہ کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ الگ سطر میں لکھئے بھائی، پھر طلاق بغیر ضرورت ممنوع ہے، پھر طلاق بغیر ضرورت ممنوع ہے، حدیث ہے، حدیث ہے اب غز الحلال اب غز بئی با غین ضاد ہے بھائی اب غز الحلال لکھ لیا بھائی الی اللہ بھائی اب غز الحلال الی اللہ الی اور پھر لفظ اللہ ہے بھائی الطلاق الطلاق حدیث لکھ لی بھائی اب غز الحلال الی اللہ الطلاق یعنی حلال چیزوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ مبغوض سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند طلاق ہے اور ناپسند طلاق ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ حلال چیزوں کے اندر اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے بھائی. آگے لکھیے الگ سطر. علماء نے لکھا ہے کہ طلاق کبھی حرام ہوتی ہے کہ طلاق کبھی حرام ہوتی ہے کبھی مکروہ کبھی مندوب کبھی مباح یہ بہ اعتبار اختلاف احوال ہے جب خاوند حقوق سے بالکل عاجز آ جائے تو طلاق دینا واجب ہے اور اگر وہ عجز کم ہو تو پھر صرف مندوب ہے ورنہ صرف جائز ہے اور اگر طلاق مفضی ضاد اور یا ہے آخر میں اور اگر طلاق مفضی الہ الفساد العظیم لکھ لیا بھائی. اور اگر طلاق مفضی الی الفساد العظیم ہو تو پھر طلاق حرام ہے اگر فساد کچھ کم ہو پھر طلاق دینا مکروہ ہے الگ سطر میں لکھئے. عند الاحناف طلاق کی دو قسمیں ہیں तलाक की दो किस्में हैं, सुन्नी सुन्नी और बिदई और बिदई। फिर सुन्नी दो किस्म पर है, फिर सुन्नी दो किस्म पर है, हसन और अहसन, हसन और अहसन अलग सतर। तलाक़े हसन ये है, तलाक़े हसन ये है कि एक तलाक़े रजई दे, कि एक तलाक़े रजई दे उस तोहर में जिसमें जिमा न किया हो, जिसमें जिमा न किया हो और न उससे कबल, और न उससे कबल हैज में जिमा किया हो, हैज में जिमा किया हो। क्या लिखा? तलाक़े हसन ये है कि एक तलाक़े रजई दे उस कोहर में जिसमें जिमा न किया हो और न उससे कबल हैज में जिमा किया हो। भाई देखिए, हैज के अंदर जिमा ये तो हराम है, लेकिन बहरहाल कोई कर तो सकता है भाई, अगरचे फेले हराम है लेकिन इहतेमाल तो है। लिहाजा तलाक़े हसन में जरूरी है कि तलाक़े रजई दे और ऐसे तोहर में दे जिसमें जिमा न किया हो और नीज उससे माकबल वाले हैज में भी उसने जिमा न किया हो। बात समझ में आ रही है? आगे लिखिए, फिर अगर वो दूसरी तलाक दे, फिर अगर वो दूसरी तलाक दे तो वो दूसरे तोहर में हो, तो वो दूसरे तोहर में हो, मा शराइते मजकूरा, मा शराइते मजकूरा। और फिर तीसरी तलाक दे, और फिर तीसरी तलाक दे तोहरे सालिस में, तोहरे सालिस में मा शराइते मजकूरा, मा शराइते मजकूरा। बस तलाक़े सुन्नी के लिए, बस तलाक़े सुन्नी के लिए मुतअद्दिद शर्तें हैं, मुतअद्दिद शर्तें हैं। शर्ते अव्वल, शर्ते अव्वल तोहर में दी जाए, तोहर में दी जाए, लिहाजा हैज व निफास में तलाक, लिहाजा हैज व निफास में तलाक बिदई है, बिदई है यानी बिदअत है, यानी बिदअत है। और मासियत व गुनाह है, और मासियत व गुनाह है। लिख लिया? आगे लिखिए, शर्ते सानी, शर्ते सानी। इस तोहर में जिमा न हो, इस तोहर में जिमा न हो, अगर जिमा हो, अगर जिमा हो तो बिदई है, अगर जिमा हो तो बिदई है। शर्ते सालिस, शर्ते सालिस, एक तलाक हो, एक तलाक हो और वो भी रजई हो, और वो भी रजई हो। लिहाजा अगर दो तलाकें दी, लिहाजा अगर दो तलाकें दी एक तोहर में, एक तोहर में, तो फिर ये बिदई तलाक होगी, तो फिर ये बिदई तलाक होगी जो कि हराम है, जो कि हराम है और गुनाह है, और गुनाह है। और अगर एक तलाके बाइन दी, और अगर एक तलाके बाइन दी तो ये भी बिदई है, तो ये भी बिदई है। बकौले अजहर, बकौले अजहर, ज़ा के साथ है भाई, तवाज़ा, बकौले अजहर। बात समझ में आ रही है? यानी तलाके बाइन दी जाए तो इस सिलसिले में दो कौल हैं। एक कौल के मुताबिक ये बिदई नहीं है, लेकिन वो कौल जो ज्यादा जाहिर है उसके मुताबिक ये तलाके बाइन भी क्या है, ये बिदई है भाई। आगे लिखिए शर्त राबिया, शर्त राबिया कि इससे कबल हैज में भी, कि इससे कबल हैज में भी जिमा न किया हो, जिमा न किया हो। आगे अलग सतर लिखिए, सुन्नी अहसन तलाक में, सुन्नी अहसन तलाक में बेआईन ही वही शराइत हैं, बेआईन ही वही शराइत हैं जो हसन में हैं, जो हसन में हैं। अलबत्ता एक शर्त जायद है, अलबत्ता एक शर्त जायद है और वो ये, और वो ये कि सिर्फ एक तलाक पर इक्तिफा करे, और वो ये कि सिर्फ एक तलाक पर इक्तिफा करे। जी आगे अलग सतर लिखिए भाई, और अगर औरत गैर मदखूल बिहा है, और अगर औरत गैर मदखूल बिहा है यानी खावंद ने, यानी खावंद ने उसके साथ सोहबत नहीं की, उसके साथ सोहबत नहीं की तो इसको, तो इसको तोहर में भी तलाक दी जा सकती है, तो इसको तोहर में भी तलाक दी जा सकती है और हैज में भी, और हैज में भी। और ये एक ही तलाक से, और ये एक ही तलाक से बाइना हो जाएगी, बाइना हो जाएगी और इस पर कोई इद्दत नहीं है, और इस पर कोई इद्दत नहीं है। ये फौरन ही आगे निकाह कर सकती है। लिख लिया। आगे अलग सतर लिखिए भाई। जमहूर उम्मत के नजदीक अगर एक ही मजलिस में तीन तलाकें दी जाएं, अगर एक ही मजलिस में तीन तलाकें दी जाएं, तो वो तीन ही शुमार होंगी, तो वो तीन ही शुमार होंगी। जबकि इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह, जबकि इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह और उनके शागिर्द इब्ने कय्यम रहिमहुल्लाह और इसी तरह जमाने हाल के गैर मुकल्लिदीन के नजदीक एक मजलिस में तीन तलाकें वाकई ही नहीं हो सकती। लेकिन मज़कूरा उलमा के अलावा अइम्मा अरबा और कुल उम्मत सलफन सीन लाम फा अलिफ, ऊपर दो जबर डाल दें, सलफन व खलफन सबके नजदीक एक मजलिस में तीन तलाकें वाकई हो सकती हैं। चुनांचे हदीस है हजरत रुकाना रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिन्होंने बीवी को तीन तलाकें दी थीं। और हदीस में तीन तलाकों पर तलाक़े बत का इतलाक किया गया है तलाक बत का इतलाक किया गया है। बत उनका माना है कत उन, बा और लंबी ता है, ता मुशद्दद है। बत उनका माना है कत उन, काफ त्वा और आइन, कत उन, कत उन यानी तोड़ना और काटना। और ये किनाया है, और ये किनाया है तीन तलाकों से, ये किनाया है तीन तलाकों से, क्योंकि वो भी कातिअ होती हैं, क्योंकि वो भी कातिअ होती हैं। चुनांचे हदीस में है, चुनांचे हदीस में है, عن رکانة رضی اللہ تعالی عنہ, عن رکانة رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی, قال اتیت, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت, فقلت يا رسول الله, يا رسول الله إني طلقت, إني طلقت امرأتي, امرأتي البتتا, البتتا فقال ما أردت بها, فقال ما أردت بها, فقلت واحدة, فقلت واحدة, فقال والله, فقال والله, فقلت والله, فقلت والله, قال فهو ما أردت, قال فهو ما أردت, أردت بيها अलिफ है, रा, दाल और ता है लंबी। हदीस का तर्जमा समझ में आ रहा है, देखो तर्जमा भी देख लीजिए कि हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कालातई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फकुल तो या रसूल अल्लाह इन्नी तल्लक तुम रती अलबत्ता था, कि या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी को, मैंने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दी हैं, मैंने अपनी बीवी को तीन तलाकें दी हैं। फकाल मा अरद तबीहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके जरिए तुमने क्या इरादा किया था, फकुल तो वाहिदतन, तो मैंने कहा मैंने एक का इरादा किया था। तो फकाल वल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया वल्लाह यानी क्या तुम अल्लाह की कसम खाते हो इस पर, फकुल तो वल्लाह, तो मैंने कहा वल्लाह के हां मैं इस पर कसम खाता हूं मैंने एक का इरादा किया था। तो काल फहुआ मा अरदता, तो फिर वो ही है जो तुमने इरादा किया, यानी एक ही तलाक है। बात समझ में आ गई जी, लिखिए आगे भाई। हुजूर अलैहि सलाम ने, हुजूर अलैहि सलाम ने तलाक वाहिद के इरादे पर, तलाक वाहिद के इरादे पर हजरत रुकाना रजी अल्लाह ताला अन्हो से कसम ली, हजरत रुकाना रजी अल्लाह ताला अन्हो से कसम ली। मालूम हुआ, मालूम हुआ कि अगर तीन का इरादा होता, मालूम हुआ कि अगर तीन का इरादा होता तो तो एक मजलिस में तीनों वाके हो जाती और अगर एक ही मजलिस में तीन तलाकें भी एक ही शुमार होती तो फिर इरादा वाहिद के लिए कसम खिलाने की जरूरत न थी बल्कि खुद इरादा वाहिद की भी जरूरत न थी। लिख लिया, बल्कि खुद इरादा वाहिद की भी जरूरत न थी। भाई, इससे एक और बात मालूम हुई कि तीन तलाकें एक भी शुमार हो सकती हैं अगर इरादा एक का हो। अलबत्ता तीन तलाकों के तरीके दो हैं। जी, अलग सतर लिखिए। पहला तरीका यह है कि यूं कहे अंति तालिकुन सलासन यानी बाकायदा सलासा के अदद को जिक्र करे, यानी बाकायदा सलासा के अदद को जिक्र करे, यानी बाकायदा सलासा के अदद को जिक्र करे। इस सूरत में इंदल जमहूर व अइम्मा अरबा तीन तलाकें ही वाके होती हैं। कोई सूरत नहीं एक तलाक के इरादा की। अगरचे कहता भी रहे कि एक तलाक का इरादा था कि एक तलाक का इरादा था क्योंकि लफ्ज़े सलासा में कमी का इहतमाल नहीं है, कमी का इहतमाल नहीं है। जैसे कोई शख्स तीन चीजें मांगे जब दी जाए तो कहे, जब दी जाए तो कहे कि मेरा इरादा एक का था, कि मेरा इरादा एक का था। बात समझ में आ गई जी। आगे अलग सतर लिखिए। दूसरा तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि लफ्ज़े तलाक तीन दफा जिक्र करे, कि लफ्ज़े तलाक तीन दफा जिक्र करे, यूं कहे अंति तालिकुन, तीन मर्तबा लिखें भाई, अंति तालिकुन, या सिर्फ तालिकुन कहे, ये भी तीन दफा लिखें तालिकुन, या सिर्फ तालिकुन कहे। लिख लिया भाई, दोबारा सुन लें। दूसरा तरीका यह है कि लफ्ज़े तलाक तीन दफा जिक्र करे, यूं कहे अंति तालिकुन, या सिर्फ तालिकुन कहे। इस दूसरी सूरत में भी तीन तलाकें वाके होंगी अगर इरादा तीन का हो। और अगर कहे कि मेरा इरादा एक तलाक का था, कि मेरा इरादा एक तलाक का था, और बाकी अल्फाज बतौरे ताकीद के कहे थे तो उसका ये कौल दुरुस्त है और एक ही तलाक होगी दियानतन लाकजान, दियानतन लाकजान, यानी घर में मामला ठीक हो जाएगा, यानी घर में मामला ठीक हो जाएगा, यानी घर में मामला ठीक हो जाएगा, और बीवी पास रखेगा। और अगर काजी तक बात पहुंच गई तो काजी तीन तलाकें ही कहेगा और जुदाई कर देगा। ये दूसरी सूरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में, और सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हों की खिलाफत में, और सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में और आहद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इब्तिदा में और आहद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इब्तिदा में कज़ाअन भी एक शुमार की जाती थी, कज़ाअन भी एक शुमार की जाती थी, क्योंकि लोग नेक थे, क्योंकि लोग नेक थे और दयानतदार थे, और दयानतदार थे। फिर हजरत उमर ने बाद में कहा कि अब लोग इतने नेक नहीं रहे, लिहाजा कज़ाअन तीन ही शुमार होंगी, लिहाजा कज़ाअन तीन ही शुमार होंगी। बहरहाल इस बात पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, कि एक मजलिस में तीन तलाकें वाके होती हैं, बस भाई बहस मुकम्मल हुई, तफसील समझ में आ गई भाई, ये कीमती बहस है भाई। तलाक का माना जिक्र हुआ इसके अंदर के तलाक हल्लुल कैद को कहते हैं, बंद चीज को खोलना भाई। फिर ये बंद खोलना हिस्सी भी हो सकता है और मानवी भी, हिस्सी जैसे रस्सी खोलना, गिरा खोलना, और मानवी जैसे कैद निकाह को खोलना। और शरअन जो है ये निकाह को जायल करना और निकाह के खिल्लत को कम करना मखसूस लफ्ज यानी लफ्ज तलाक के साथ भाई। और आपने पढ़ा कि तलाक दो किस्म पर है, एक सुन्नी और एक बिदई, और सुन्नी भी दो किस्म पर है, एक अहसन है और एक हसन है भाई। और हसन यह है कि इंसान तीन तोहरों में तीन तलाकें दे बीवी को, और वो तलाकें भी रजई हों, और वो तोहर ऐसे हों कि जिनके अंदर जिमा न किया हो, तो ये क्या है, तलाक हसन, और ये भी सुन्नत है। और इसी तरह तलाक अहसन वो भी सुन्नत है, लेकिन उसमें एक शर्त और है कि वहां सिर्फ एक ही तलाक पर इक्तफा कर ले। बात समझ में आ गई। यहां तलाक से मुतालिक एक दो बातें मजीद भी याद रखें भाई, मजीद भी याद रखो कि वो औरत जिसके साथ खावंद ने सोहबत नहीं की उसको एक तलाक भी दे दी जाए तो वो फौरन बाइन हो जाती है, खावंद से जुदा हो जाती है, और उस पर इद्दत वगैरह भी नहीं है, वो फौरन आगे कहीं निकाह करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन मदखूल बिहा यानी वो औरत जिसके साथ खावंद सोहबत कर चुका है उसको जो खावन तलाक देता है वो रजई भी हो सकती है और बाइन भी हो सकती है। तलाक कितनी किस्म पर, दो, एक रजई और एक बाइन। तलाक रजई वो है जिसके अंदर खावंद रुजू कर सकता है इद्दत के अंदर अंदर, यानी दोबारा वहां निकाह की जरूरत नहीं। एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, याद रखो इसे तलाक रजई हुई, तो इसे तलाक रजई हुई, और तलाक रजई के अंदर खावंद इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकता है। मसलन यूं कह दे मैं रुजू करता हूं या मैंने रुजू कर लिया ये जुबान से कह दे, या अपने किसी अमल के जरिए भी रुजू कर सकता है, मसलन बीवी का बोसा ले लिया या बीवी से सोहबत कर ली, यानी कोई ऐसा काम किया जो बीवी के अलावा और किसी औरत के साथ जायज नहीं, तो उस खावंद का यह अमल भी बतला रहा है कि मालूम हो वो रुजू कर रहा है, तवज्जो है। तो लिहाजा इससे फिर रुजू हो जाएगा इद्दत के अंदर अंदर, और यहां दोबारा निकाह की जरूरत नहीं है, वो बीवी अब भी पहले ही की तरह बीवी है। अलबत्ता अब तलाकों की तादाद कम होकर दो रह गई, पहले खावन तीन तलाकों का मालिक था, अब तमाम जिंदगी के लिए सिर्फ दो तलाकों का मालिक है। फिर खावंद अगर एक और तलाक रजई दे देता है और फिर रुजू कर लेता है तो अब भी ये औरत उसकी बीवी है, लेकिन अब उसके पास तमाम जिंदगी सिर्फ एक ही तलाक का हक बाकी रह गया है भाई। और अगर फिर जब तीसरी भी तलाक दे देगा तो इसको तलाक मुगल्लजा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? तलाक मुगल्लजा, यानी सख्त तलाक। तो तीन तलाकों को तलाक मुगल्लजा कहते हैं, क्योंकि इसके बाद रुजू नहीं हो सकता, खावंद इस औरत से अब दोबारा निकाह नहीं कर सकता, इल्ला ये कि यह औरत किसी और से निकाह कर लेती है और फिर उस वो शख्स जो है किसी वक्त जिंदगी में इस औरत को तलाक दे देता है या उस आदमी का इंतकाल हो जाता है तो फिर पहला खावंद इस औरत से निकाह कर सकता है, वरना वैसे निकाह नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? तो तलाक जो है दो किस्म पर है, एक तलाक रजई है जिसके अंदर रुजू हो सकता है, और दूसरी तलाक बाइन है। तलाक बाइन यह है कि तलाक के साथ कोई लफ्ज खावंद बढ़ा दे, मसलन पहली सूरत क्या थी, खावंद ने बीवी से कहा कि तुम्हें तलाक है, दूसरी सूरत यह है खावंद कहता है तुम्हें तलाक बाइन है भाई। क्या है? देखो ये बाइन का लफ्ज साथ मिला दिया, बाइन का माना जुदा करने वाली, यानी तुम्हें जुदा करने वाली तलाक है। तो याद रखो इस सूरत में खावंद रुजू नहीं कर सकता क्योंकि उसने तलाक बाइन दी है भाई, और तलाक बाइन के अंदर निकाह टूट जाता है, निकाह टूट गया। तो तलाक बाइन के बाद औरत फिर जब इद्दत गुजारेगी तो इद्दत गुजारने के बाद अब वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। तो तलाक बाइन में निकाह टूट जाता है और इद्दत गुजारने के बाद अगर औरत किसी और से निकाह करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन अगर यही खावन दोबारा निकाह करना चाहता है, इसने तो अभी सिर्फ एक तलाक दी है लिहाजा ये अभी भी इस औरत से निकाह कर सकता है, और ये खावन जो है इद्दत के अंदर भी निकाह कर सकता है इस औरत से और इद्दत के बाद भी। पहला खावंद ही निकाह करना चाहता है तलाक बाइन में तो इद्दत के अंदर भी निकाह कर सकता है और इद्दत के बाद भी निकाह कर सकता है, लेकिन अगर औरत किसी और से निकाह करना चाहती है तो इद्दत के अंदर निकाह नहीं कर सकती, इद्दत के बाद ही निकाह फिर कर सकती है किसी और के साथ। बात समझ में आ गई? तो तलाकें कितनी किस्म की? दो, एक रजई जिसमें इद्दत के अंदर रुजू हो सकता है, एक तलाक बाइन जिसके अंदर निकाह टूट गया, अब अगर इस बीवी को रखना है तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा, नया महर मुकरर करना पड़ेगा। और फिर इसी तरह याद रखें, आगे साहिबे हिदाया भी आपको बतलाएंगे कि तलाक के अल्फाज के एतबार से तलाक दो किस्म पर है, एक को सरीह कहते हैं एक को किनाया कहते हैं। सरीह भाई स्वाद के साथ है, सरीह यानी साफ लफ्जों में जो तलाक हो। एक शख्स अपनी बीवी से कहता है कि तुझे तलाक है, देखो ये साफ लफ्जों में तलाक दे रहा है, ये जो उस शख्स ने जुमला कहा तुम्हें तलाक है, देखो इसका और कोई माना नहीं है। तो सरीह किसे कहते हैं? साफ लफ्जों में जो तलाक दी जाए जहां कोई और माना ना हो, सिर्फ तलाक ही का माना हो, जिसको क्या कहते हैं? सरीह। और अगर खावन ने गोलमोल सी बात जिक्र की जिसमें तलाक का माना भी है और माना भी उसके अंदर निकल सकता है तो फिर इसको किनाया कहते हैं। जैसे खावन बीवी से कहता है तू जुदा है, तू जुदा है, तो अब इसमें तलाक का माना भी निकल सकता है कि तू जुदा है यानी मुझसे जुदा है क्योंकि मैं तुझे छोड़ चुका हूं, मैं तुझे तलाक दे चुका हूं। और तू जुदा है इसके अंदर और माना भी निकल सकता है कि मतलब यह है कि तू बाकी औरतों से जुदा है, कोई भी औरत हुस्न जमाल में तेरे जैसी नहीं भाई। तो इसको कहते हैं किनाया। तो सरीह वो तलाक जिसमें तलाक के अलावा और किसी माना का एहतमाल न हो, और किनाया जो है वो तलाक है जिसमें गोलमोल अल्फाज के साथ तलाक दी जाए और वहां तलाक का माना भी निकलता हो और दूसरा माना भी निकलता हो भाई। और फिर याद रखो ये सरीह जो है ये रजई भी हो सकती है और बाइन भी हो सकती है, इसी तरह किनाया जो है वो रजई भी हो सकता है और बाइन भी हो सकता है। रजई जिसमें रुजू हो सके, बाइन जिसमें रुजू न हो सके। तो तलाक चाहे सरीह हो चाहे किनाया हो, दोनों जो हैं रजई भी हो सकती हैं और बाइन भी। तो कुल तलाक की गोया चार किस्में बन गई, सरीह रजई और सरीह बाइन, इसी तरह किनाया रजई और किनाया बाइन, चार किस्में हो गई। कौन कौन सी चार किस्में, दोहराइए भाई जुबान से, कौन कौन सी चार किस्में? नंबर एक सरीह रजई और फिर सरीह बाइन, फिर किनाया रजई और किनाया बाइन। भाई तो सरीह रजई वो है जिसमें तलाक के लफ्ज के साथ साफ लफ्जों के अंदर तलाक देता है और उसके साथ कोई लफ्ज नहीं बढ़ाता। मसल खावन बीवी से कहता है मैं तुझे तलाक देता हूं, तो साफ लफ्जों में तलाक दी और कोई साथ सिफत वगैरह नहीं बढ़ाई। और बाइन वो है जिसके अंदर खावन कुछ अल्फाज बढ़ा दे कि मैं तुम्हें तलाके बाइन देता हूं, या यूं कहते हैं मैं तुम्हें पहाड़ जितनी तलाक देता हूं, या मैं तुम्हें बहुत बड़ी तलाक देता हूं, या मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी तलाक देता हूं। तो देखो तलाक के साथ खावन ने कुछ अल्फाज बढ़ा दिए तो अब इन अल्फाज का भी असर पड़ेगा और यह तलाक जो होगी वो रजई न रहेगी बल्कि बाइन हो जाएगी। तो सरीह रजई और सरीह बाइन भाई। इसी तरह किनाया जो है, किनाया मैंने बताया गोलमोल अल्फाज के साथ तलाक देना, ये किनाया भी कभी रजई होगा और कभी बाइन। याद रखिए आपको साहिबे हिदाया बतलाएंगे कि अरबी जुबान में तीन किनायात ऐसे हैं जिनसे तलाके रजई होगी, तीन किनायात ऐसे हैं जिनसे तलाके रजई, बाकी जितने किनायात हैं उन सबसे तलाके बाइन होगी। तो मालूम हुआ किनायात भी कितने किस्म के हो गए, दो, कुछ किनायात रजई हैं और कुछ किनायात बाइन हैं भाई। फिर अगर खावंद बीवी को एक तलाक देता है, तवज्जो है, फिर इद्दत के अंदर खावंद अगर दूसरी तलाक देता है तो क्या ये दूसरी शुमार करेंगे या शुमार नहीं करेंगे? तो इस सिलसिले में जाबता याद रखना, जाबता याद रखना कि खावंद जो पहली तलाक देगा या तो वो सरीह रजई होगी या सरीह बाइन होगी या किनाया रजई होगी या किनाया बाइन होगी। तवज्जो है, खावन ने पहली तलाक दे दी, कौन सी हुई? या तो वो सरीह रजई होगी या सरीह बाइन होगी या किनाया रजई होगी या किनाया बाइन। अब इद्दत के अंदर खावन दूसरी तलाक देना चाहता है तो वो दूसरी तलाक भी या वो सरीह रजई होगी या सरीह बाइन होगी या किनाया रजई होगी या किनाया बाइन, क्योंकि यही चार किस्में हैं तलाक की। तो गोया यहां कुल 16 सूरतें बन जाती हैं। कितनी सूरतें? 16 सूरतें। देखो मसलन पहली तलाक कौन सी दी? सरीह रजई। और दूसरी तलाक वो सरीह रजई भी हो सकती है, सरीह बाइन भी और किनाया रजई भी और किनाया बाइन भी। तो ये चार सूरतें इसमें बन गई। पहली तलाक कौन सी? सरीह रजई। इसके अंदर कितनी सूरतें बन गई? चार सूरतें के दूसरी तलाक भी सरीह रजई होगी या सरीह बाइन होगी या किनाया रजई होगी या किनाया बाइन होगी। और अगर पहली तलाक सरीह बाइन है जी। तो दूसरी तलाक में भी उसी तरह फिर चार सूरतें, तो चार सूरतें इसके अंदर हो गई। और तो इस तरह हर एक में चार चार सूरतें बनेंगी। पहली तलाक कौन सी है? सरीह रजई। तो इसके अंदर भी दूसरी तलाक में चार सूरतें, और पहली तलाक अगर सरीह बाइन है इसके अंदर भी दूसरी तलाक में चार सूरतें, अगर पहली तलाक किनाया रजई है तो इसके अंदर भी दूसरी तलाक में चार सूरतें, और अगर पहली तलाक जो है किनाया बाइन है तो दूसरी तलाक में यहां भी चार सूरतें। तो पहली तलाक जो भी हो दूसरी के अंदर चार चार सूरतें बनेंगी जी। तो गोया कुल 16 सूरतें बन गई। एक शख्स ने बीवी को तलाक दी है और इद्दत के अंदर दूसरी तलाक देता है तो क्या ये दूसरी भी शुमार की जाएगी या ये लग्व चली जाएगी, जाया हो जाएगी? तो उसमें फुकहा फिर जाब्ता बयान फरमाते हैं कि ये कुल 16 सूरतें बन गईं। इन 16 के अंदर याद रखना, इन 16 के अंदर याद रखना 14 सूरतों में दूसरी तलाक भी साथ मिल जाएगी और दो तलाकें हो जाएंगी। एक तलाक दी थी और फिर इद्दत के अंदर दूसरी तलाक दी, तो 14 सूरतों के अंदर दूसरी तलाक भी पहली के साथ मिलेगी और तलाकों की तादाद दो हो जाएगी। लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर दूसरी तलाक पहली के साथ नहीं मिलेगी, दूसरी तलाक लग्व और बेकार चली जाएगी, और वो सूरत है, वो सूरत है जब दूसरी तलाक किनाया बाइन हो। अगर दूसरी तलाक किनाया बाइन हो और पहली वाली भी बाइन है तो ये किनाया बाइन उस पहली बाइन के साथ नहीं मिलेगी। दूसरी तलाक, तवज्जो से सुनो, 16 में से दो सूरतों के अंदर दूसरी तलाक लगव और बेकार चली जाएगी, वो पहली तलाक से नहीं मिलेगी। वो कौन सी दो सूरतें हैं? जिसमें दूसरी किनाया बाइन हो और पहली बाइन हो, चाहे वो सरीह बाइन हो चाहे किनाया बाइन हो। जी। पहली क्या हो? बाइन हो, चाहे सरीह बाइन हो चाहे किनाया बाइन हो, उससे एक तलाके बाइन हो चुकी है। मसलन पहले सरीह बाइन आई और उसके बाद किनाया बाइन आई, तो ये किनाया बाइन उस सरीह बाइन के साथ नहीं मिलेगी, ये लग्व चली जाएगी, एक ही तलाक है भाई। या पहली भी किनाया बाइन थी और दूसरी भी किनाया बाइन आ गई, तो ये दूसरी किनाया बाइन लग्व चली जाएगी, इसका कोई एतबार नहीं, एक ही तलाक शुमार की जाएगी। तो 16 किस्मों के अंदर, 14 किस्मों के अंदर दूसरी तलाक पहली तलाक से मिलेगी और दो सूरतों के अंदर दूसरी तलाक पहली तलाक से नहीं मिलेगी। वो कौन सी दो सूरतें हैं? जिनमें दूसरी तलाक किनाया बाइन हो और पहली बाइन हो, चाहे वो सरीह बाइन हो चाहे किनाया बाइन हो, तो ये दूसरी तलाक पहली से नहीं मिलेगी। चुनांचे फुकहा इस सिलसिले में एक जाब्ता भी जिक्र फरमाते हैं भाई, वो फरमाते हैं अस्सरीह यलहक उस्सरीह, बल्कि ये जाब्ता लिख लीजिए, ये आपके काम आएगा भाई। अस्सरीह यलहक उस्सरीह वल बाइना, अस्सरीह यलहक उस्सरीह वल बाइना, अस्सरीह यलहक उस्सरीह वल बाइना, वल बाइनु ला यलहकुल बाइना, वल बाइनु ला यलहकुल बाइना। तो देखा, सरीह सरीह के साथ भी मिलेगी और बाइन के साथ भी मिलेगी। दूसरी तलाक अगर सरीह है तो वो पहली सरीह हो तो उसके साथ भी मिलेगी और पहली बाइन हो तो उसके साथ भी मिलेगी, यानी दूसरी का एतबार करेंगे जब वो तलाके सरीह हो। लेकिन वल बाइन ला यलहकुल बाइना, बाइन जो है वो बाइन के साथ नहीं मिलेगी, यानी मुराद है किनाया बाइन, किनाया बाइन जो है वो बाइन के साथ नहीं मिलेगी। अगर पहली बाइन है और दूसरी किनाया बाइन है तो ये उस पहली के साथ नहीं मिलेगी। तो ये जाब्ता भी आपको याद होना चाहिए, अस्सरीह यलहकु सरीह वल बाइना, के सरीह जो है सरीह और बाइन दोनों से मिल जाती है, वल बाइनु ला यलहकुल बाइना, और बाइन बाइन के साथ नहीं मिलती, यानी किनाया बाइन जो है वो बाइन के साथ नहीं मिलती। चलिए बस करें, बात समझ में आ गई, कल फिर इंशाल्लाह ये किताब से शुरू करेंगे। लेकिन ये कि तलाक की इब्तिदाई बहसें भाई, इनको अच्छी तरह समझ लें, आगे सारी तलाक की बहस चलेगी। आपको पता होना चाहिए तलाक रजई किसे कहते हैं, मैंने बताया जिसमें रुजू हो सके, और तलाक बाइन मैंने बताया वो तलाक जिसमें तलाक के साथ बाइन का लफ्ज खावन बढ़ा दे या कोई और सिफत वगैरह बढ़ा दे कि बड़ी तलाक देता हूं या पहाड़ जितनी तलाक देता हूं, तो ये तलाक बाइन और इसे निकाह फौरन टूट जाता है, इसमें रुजू नहीं हो सकता, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। और इद्दत के अंदर भी खावन निकाह कर सकता है इस औरत से और इद्दत के बाद भी कर सकता है। और फिर उसके बाद बताया तलाक के अल्फाज के एतबार से तलाक की दो किस्में हैं, एक सरीह और एक किनाया। सरीह वो लफ्ज जिसमें तलाक के अलावा और कोई माना ही ना हो भाई, और किनाया वो है जिसमें तलाक के अलावा और भी माना हो भाई। और फिर ये सरीह भी दो किस्म पर है, या रजई होगा या बाइन, और किनाया भी दो किस्म पर है, रजई होगा या बाइन होगा। और पहली तलाक के साथ दूसरी तलाक मिलेगी या नहीं, तो मैंने बताया कि यहां कुल 16 सूरतें बनती हैं, दो सूरतों के अंदर दूसरी तलाक पहली तलाक से नहीं मिलेगी, और वो दो सूरतें क्या हैं? दूसरी तलाक कौन सी हो? किनाया बाइन हो, किनाया बाइन, और पहली क्या हो? बाइन हो, चाहे सरीह बाइन हो चाहे किनाया बाइन हो, तो ये जो दूसरी किनाया बाइन है ये पहली बाइन के साथ नहीं मिलेगी। तो ये तलाक की किस्में आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए भाई, खूब अच्छी तरह इनको जहन नशीन कर लें। आगे सारी बहसें चलेंगी, आपके जहन में ये बातें होंगी तो आप आसानी से समझते चले जाएंगे भाई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।